Thank you. Now, like to introduce our today's speaker, Dr. Swapan Gupta from New Delhi. आपने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद से एपिलेप्सी में फेलोशिप प्राप्त की है और आप एपिलेप्सी क्लिनिक चलाते हैं, साथ साथ एपिलेप्सी सर्जरी सहित कॉम्प्रेहेंसिव एपिलेप्सी केयर प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट करते हैं। आपकी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आपको एमबीबीएस में फिजियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने के लिए एमएएमसी एपीपीआई से एपीपीआई सिल्वर जुबली अवार्ड दिया गया था। 2016 में आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की ओर से जूनियर फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिर 2016-17 और 17-18 में आपने इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी के वर्चुअल एपिलेप्सी एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड ईजी इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी का बेसिक और एडवांस कोर्स भी किया हुआ है। मई 2018 में आपको लंदन में आयोजित इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी की मीटिंग में यंग एपिलेप्सी सेक्शन में एशिया ओशिनिया रीजन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चुना गया और एशिया ओशिनिया रीजन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्कॉलरशिप से भी आपको सम्मानित किया गया। और 2019 में आपको इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ट्रैवल फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभावान पर्सनालिटी हम सबके बीच आज का विषय जो क्रिएटिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है वो हमारे सामने रखने जा रही है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी रिस्पेक्टेड डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी से।
गुड इवनिंग। तो वैसे तो आपका हमसे डबल कनेक्शन है, एक तो एज अ फैकल्टी और एज अ अटेंडी, और दूसरा कनेक्शन जो ज्यादा स्ट्रांग है वो क्या है, हम दोनों ही मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। अभी आपने सिस्टर दीपा का जो सेशन सुना, आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोग का स्पिरिचुअल सेशन था, बहुत गहरी गहरी बातें थी, अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम उसको जो हमारी भाषा है, कौन सी, साइंटिफिक भाषा, मेडिकल भाषा, उससे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसका जैसा एटीट्यूड होता है, जिसका जैसा टेस्ट होता है, उसको उसी चीज से अच्छा लगता है, राइट। तो अब हम मेडिकल तरीके से समझेंगे स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में क्या है, ये प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, अध्यात्म, ये सब क्या है। रेडी टू गो? ओके। हम हमेशा जब भी मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो बेस्ट तरीका क्या होता है पढ़ने का, टू स्टडी केसेस। अपने स्टूडेंट्स को भी हम कैसे पढ़ाते हैं, केस का एग्जांपल देकर, देखो उसको ऐसे हुआ था। ऑब्जर्वेशनल साइंस हम हमेशा बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, बिकॉज सीइंग इज ट्रू बिलीविंग, राइट। तो आज रियल केस स्टोरीज से हम समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे ये चीजें काम करती हैं। आई रिक्वेस्ट डोंट फोटोग्राफ बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड ये पेशेंट के वीडियोज हैं, दे हैव कंसेंटेड, बट फोटोग्राफ पब्लिक नहीं करते हैं। सो दिस वॉज अ पर्सन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम पैराप्लीजिया। उनके दोनों लोअर लिम्ब्स बेजान थे 4 ईयर्स से, लॉस ऑफ सेंसेशन, नो ब्लैडर बावल कंट्रोल, 4 ईयर्स प्रॉब्लम। वेंट टू मेनी डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री, लॉट्स ऑफ इंजेक्शंस, लॉट्स ऑफ टेस्ट डन, नथिंग हेल्प्ड। केम टू अस, हमारे यहां पर भी जैसे मीटिंग होता है तो इट वॉज द केस वॉज प्रेजेंटेड एंड एवरीबडी सेड ही हैज बीन टू मेनी डॉक्टर्स, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था जो भी पॉसिबल हो सकता है, बट नो रिलीफ, दिस इज नॉट ट्रीटेबल, नॉन ट्रीटेबल, केस करके छोड़ दो। आई सेड आई विल टेक अप दिस चैलेंज। आई एडमिटेड द पेशेंट, 7 डेज लेटर दिस इज द वीडियो। तो वी ऑल नो प्लेसिबो क्या होता है, लाइक वी गिव अ ड्रग, प्लेसिबो में वी गिव द कैप्सूल बट इट इज एम्प्टी और इट इज जस्ट अ मल्टीविटामिन, बट वी टेल द पेशेंट कि हम आपको क्या दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। वी अंडरस्टैंड दैट माइंड ओवर मैटर। हम लोग आईसीयू भी देखते हैं, क्रिटिकल पेशेंट भी देखते हैं ना हम सभी, पेशेंट ठीक नहीं होता है, आईसीयू में पेशेंट ठीक नहीं भी होता है, तो हम क्या कहते हैं फैमिली से, हमने बहुत दवा की, अब आप क्या करो? यूजुअल स्टेट में इज दिस ओके नाउ? ओके ग्रेट. जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है. क्या ये सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं या इसका रियली में इफेक्ट होता है? इस कार्टून में आप देखो, एक तरफ मेडिसिन है, दुआ क्या है? व्हाट इज दुआ? दुआ हम कहते हैं उसके लिए दुआ करो, तो मन में एक हम संकल्प करते हैं कि ये अच्छा हो जाए, राइट? एक बिलीफ हम देते हैं कि ये अच्छा हो जाए. कैसे काम करता है प्लेसीबो? दुआ क्या है? वो अच्छा हो जाए. पेशेंट को जब हम कहते हैं तुम अच्छे हो जाओगे या अच्छे हो रहे हो, हम उसको दुआ ही तो दे रहे हैं, एक पॉजिटिव बिलीफ दे रहे हैं, एक प्लेसीबो दे रहे हैं. प्लेसीबो में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, तो उनको एक्यूपंक्चर दिया गया और उनका बॉडी पेन सबसाइड हो गया, करेक्ट है? नेक्स्ट सेशन में जब उनको बॉडी पेन था तो उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, और तब उनको फिर जब सेशन दिया गया उसके बाद भी उनका पेन ठीक हो गया. व्हाट इज अनयूजुअल इन दिस? इसमें अलग बात क्या है? अलग बात ये थी, सेकंड सेशन में उनको एक्यूपंक्चर नीडल नहीं दी गई थी, उनको टूथपिक, जो टूथपिक हम यूज करते हैं ना टीथ में जब कुछ फंस जाता है, वो यूज की गई थी. बट प्लेसीबो इफेक्ट कि मुझे एक्यूपंक्चर मिल रहा है, इट वर्क्ड द सेम. तो प्लेसीबो इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन यू आर इंस्टीट्यूटिंग शैम और इनएक्टिव ट्रीटमेंट, तब भी इफेक्ट आ रहा है. हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, एक तरफ प्लेसीबो देते एक तरफ ड्रग देते हैं, और हम देखते हैं प्लेसीबो से भी रिस्पॉन्स आता है, एंड वी से इट इज इनएक्टिव, इट इज शैम ड्रग. माई क्वेश्चन टू दिस इंटेलिजेंट ऑडियंस ऑगस्ट गैदरिंग इज, आप सभी लोग डॉक्टर्स हैं, हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? माई क्वेश्चन टू यू इज, एक इनएक्टिव कंपाउंड उस पेशेंट को जो हमने दिया था, वो इतना एक्टिव रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? आप सबने जवाब तो सही दिया, प्लेसीबो. बट द क्वेश्चन इज, अगर एक्शन रिएक्शन को क्रिएट करता है, तो इनएक्टिव कंपाउंड एक्टिव रिजल्ट को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? एक्चुअली दीज पिल्स विच वर गिवन टू दैट पेशेंट, दे वर फिजिकली एम्प्टी, दे वर नॉट हैविंग अ एक्टिव फिजिकल ड्रग, बट वॉट वर दे हैविंग? दे वर हैविंग अ पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव वर्च्यूज. आपको पता है वो पेशेंट का प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली में? जब कोविड आया ना, ही वॉज अ फार्मर, ही हैड अ मैसिव मेजर फाइनेंशियल लॉस. तो क्या हुआ उसके बाद? स्ट्रेस, डिप्रेशन. नाउ इट इज बेटर? इज इट बेटर? ओके ओके. तो ही वेंट इन टू डिप्रेशन, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आया. ऑल हिज टेस्ट वर एब्सोल्यूटली नॉर्मल, MRIs, ब्लड टेस्ट, जो भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ऑल टेस्ट वर नॉर्मल. उसकी प्रॉब्लम तो फिजिकल थी ही नहीं, उसकी प्रॉब्लम थी यहां से मेंटल, विच हैड लेड टू पैरापरेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? साइकोसोमैटिक इलनेस. और जगह जब वो जा रहा था तो एक डॉक्टर के बाद दूसरा तीसरा, तो एक हमारी टेंडेंसी क्या होती है, वहां ठीक नहीं हुए, ये मेडिसिन मिल गई है, ये केस ठीक नहीं होगा. अल्टीमेटली उसके माइंड में कौन सा बिलीफ दिया? आप तो ठीक हो ही नहीं सकते. वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया, वो ठीक नहीं हुआ. हमारे पास जब आया, हमने क्या कहा? आप तो ठीक हो जाओगे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ये बड़े अच्छे से ठीक हो जाती है. साथ में हमने कुछ टूल्स भी यूज किए. कैसे? न्यूरोलॉजी में नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है एक, उस टेस्ट में हम स्टिमुलेट करते हैं नर्व को और लिम्ब मूव करता है, राइट? तो हमने उसको जब स्टिमुलेट किया और उसका लिम मूव किया क्योंकि प्रॉब्लम तो फिजिकल थी ही नहीं, तो दिखाया देखो आपका लिम तो मूव कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, पावर दिया उसके माइंड को, बिलीफ दिया, स्ट्रेंथ दिया। जो प्रॉब्लम कहां थी, साइकिक में, वो ठीक होती चली गई, वो पेशेंट ठीक हो गया। ये आर्ट शायद हम कहीं भूल रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। आज हम मैकेनिकल ड्रग्स, फिजिकल ड्रग्स पर बहुत रिलाय करते हैं, लेकिन कितनी बार पेशेंट को हम प्यार से समझाते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। दो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर है जो ब्रिलियंट डॉक्टर है, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, वो फटाफट मेडिसिन लिखता है और कहता है कि आप ले लेना, चलिए नेक्स्ट पेशेंट। दूसरा डॉक्टर है जो कहता है, बिठाता है, अच्छे से पूछता है और एक स्माइल से आपको कहता है कि आप अच्छे हो जाओगे। किस डॉक्टर के पास पेशेंट्स या हम खुद जाना प्रेफर करेंगे? क्यों? वो डॉक्टर तो इतना ब्रिलियंट भी नहीं था, क्योंकि उसने आपको एक प्लेसिबो का इफेक्ट दिया। हम उसको प्लेसिबो कहते हैं, लेकिन हम उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? वी कॉल इट एनीथिंग, दिस इज कंबाइनिंग फिजिकल विद साइकिक पावर। और प्लेसिबो साइंटिफिकली इट हैज बीन शोन, इट रिलीजेज वेरियस पॉजिटिव केमिकल्स लाइक एंडोजिनस ऑपियोइड, CCK, अदर हॉर्मोन्स विच एक्ट पॉजिटिवली ऑन द ब्रेन एंड देन द ऑर्गन्स। ये MRI है, फंक्शनल MRI। इसमें देखा गया कि जब हम प्लेसिबो रिस्पॉन्स देते हैं तो वो क्या सिर्फ एक मेंटल इफेक्ट है? नो, इट हैज इफेक्ट फिजिकली ऑल्सो। ये जो एरियाज हैं, दीज आर पॉजिटिव एरियाज इन द ब्रेन, डॉर्सो लैटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस एकम्बंस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस इज द पावर ऑफ थॉट और बिलीव। दिस वॉज प्लेसिबो। ऑन द अदर हैंड वी हैव नोसीबो। नोसीबो क्या होता है? एनीबडी? नेगेटिव। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग दिस कार्टून, अ बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड्स होम और वहां पर वो एक बास्केट देखता है जिसमें पपीज को रखा जाता है, डॉग्स को, मे बी उनका फूड है। तो वो कहता है कि आई एम एलर्जिक टू डॉग्स हेयर, माई ईयर्स, माई आईज टीयर एंड माई फेस स्वेल जब भी मैं डॉग के हेयर के कॉन्टैक्ट में आता हूं। और नेक्स्ट मोमेंट उसके साथ हो जाता है, फेयर एनफ। बट द वेरी मोमेंट उसकी फ्रेंड जब कहती है, क्या, आई डोंट हैव अ डॉग, तो वो कहता है ओ वेल, और उसकी स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है। ये थॉट्स की जो इंपॉर्टेंस है, वी अंडर एस्टिमेट। जो भी आप सुन रहे थे ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो जो पेशेंट था, प्रॉब्लम प्योरली यहां थी, हम फिजिकली ट्रीट करते जा रहे थे, क्योंकि विद एजेस हम उस मेडिसिन को भूलते गए, जो एब्स्ट्रैक्ट मेडिसिन जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इन प्रॉब्लम्स को, जो नेगेटिव थॉट्स लीडिंग टू सोमैटिक प्रॉब्लम्स, साइकिक, सोमा, बॉडी, वी कॉल देम एज साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। ये पता है आपको फर्स्ट फिगर कौन सी है? आप लोग सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होंगे, लेकिन प्लांटर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की साइन सबको पता है, बेबिंस्की साइन। तो ये जो ओल्ड मैन है, ही इज बेबिंस्की, नो ही इज शार्को, और जो पीछे खड़े हैं उनके स्टूडेंट वो बेबिंस्की है। 200 इयर्स ओल्ड ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अ लेडी हु इज फॉलिंग अनकॉन्शियस बट रियलिटी में ब्रेन में कुछ भी नहीं है, वी कॉल इट हिस्टीरिया। आज भी, इवन आफ्टर सो मेनी एडवांसमेंट्स, स्टिल वी सी पेशेंट्स लाइक दिस कमिंग लाइक एपिलेप्सी। दिस लेडी वॉज ऑन 5 मेडिसिंस ऑफ एपिलेप्सी, नॉट कंट्रोल्ड, एक्चुअली एपिलेप्सी है ही नहीं, दीज आर नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स और सीजर्स। प्रॉब्लम क्या थी, इनकी 3 साल पहले डिवोर्स हो गया। अनदर लेडी, ये हमारे ऑफिस का चैम्बर है, बात करते करते वो फ्लोर पे गिरी और ये मूवमेंट्स होने लगे। अगेन बाहर किसी ने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर जैसे हम पूछते हैं हम लोग, तो कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए ये बेहोश हो जाती है और हाथ पैर हिलते हैं। तो क्या मतलब है, एपिलेप्सी है। मेनी ड्रग्स, नो रिलीफ. क्यों? क्योंकि वो फिजिकल डिजीज है ही नहीं, वो साइकिक प्रॉब्लम है. इनके सन की डेथ हो गई थी 2 साल पहले. शी कुड नॉट टेक इट. एंड दीज प्रॉब्लम्स आर अ मेजर कॉज ऑफ विजिट्स, मेडिकल विजिट्स नाउअडेज. IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो फिजिशियंस होंगे वो जानते होंगे. हम जाते हैं, पेशेंट्स आते हैं हार्ट बर्न्स के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, डायरिया, पेन एब्डोमेन. हम एंडोस्कोपी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑल टेस्ट. वी से ऑल टेस्ट योर टेस्ट आर नॉर्मल. पेशेंट पूछता है फिर मुझे प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब, व्हाट इज माय प्रॉब्लम. हम क्या कहते हैं, यहां से है पैल्पिटेशंस, हार्ट पेन, चेस्ट पेन, घबराहट, चक्कर आना, डिजीनेस, ट्रेमर्स. न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं. MRI, ECG, EEG, ECHO सब करते हैं. ऑल टेस्ट आर नॉर्मल. कॉमन सिनेरियोस, आपको क्या प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स. ये क्या है, दीज आर ऑल साइकिक प्रॉब्लम्स. ये बढ़ रहे हैं, वी सी देम. सब कुछ कहां से है, यहां से है. इसीलिए शायद हमने न्यूरोलॉजी चूज किया. कंट्रोल रूम कहां है बॉडी का, ब्रेन. यू ऑल एग्री. सो विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल द स्पेशलिटीज, विच इज द हाइएस्ट स्पेशलिटी. सो इट्स नॉट द हार्ट, इट्स द, यू ऑल एग्री विद मी, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, थैंक यू. ओके, तो ये इट्स ऑल इन द माइंड. हम बोलते हैं सब कुछ यहां से है. अभी आपने सुना सब कुछ माइंड का ही तो खेल है. लेकिन माइंड क्या है साइंटिफिकली. माइंड, हम कंफ्यूज होते हैं, माइंड, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है. एक सिंगल लाइन में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो वो ये है. ये जो चेयर है, जो सामने चेयर है, टेबल है, ये रूफ है और हम हैं. क्या फर्क है हम में, इनमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, ईथर, वाटर, एयर, सब कुछ. हमारे भी बॉडी जो है किससे बनी है, 5 एलिमेंट्स से बनी है. डिफरेंट प्रपोर्शन हम कहते हैं ना, कार्बन ही तो है, आफ्टर इट्स ऑल कार्बन, जिसमें एलिमेंट्स हैं. फर्क क्या है, लाइफ, वो नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, मतलब एक कॉन्शियसनेस है, राइट. कॉन्शियसनेस तो आ गई. फिर एनिमल्स, प्लांट्स और हम में क्या फर्क है, वो भी तो लिविंग है, हम भी लिविंग है. माइंड का फर्क है. तो कॉन्शियसनेस की क्वालिटी होती है माइंड. हमारा माइंड डेवलप्ड है, उनका उतना डेवलप्ड नहीं है, या वो इंफीरियर है. माइंड का काम क्या होता है, सोचना, थिंकिंग. माइंड सोचता है, मन सोचता है, माइंड सोचता है. ब्रेन क्या है, मन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता. ब्रेन दिखाई देता है, दिखाई देता है, खोल सकते हैं. तो ब्रेन उसका मीडियम है, जिसके अंदर माइंड एब्स्ट्रैक्ट एक एनर्जी की तरह काम करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे ये माइक है, माइक में एनर्जी है, साउंड एनर्जी है. लेकिन साउंड कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो माइक काम करेगा, नहीं करेगा. लेकिन अगर ये माइक का इंस्ट्रूमेंट ही ना हो तो साउंड एनर्जी पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ भी जाए काम करेगी. सेम, कॉन्शियसनेस या माइंड तब तक काम नहीं कर सकता जबकि उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट ब्रेन का नहीं हो. एग्रीड, समझ में आता है. तो आत्मा को हम कैसे समझते हैं, सिंपल. कॉन्शियसनेस इज सोल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. माइंड वो जो एनर्जी फ्लो कर रही है न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स ब्रेन फिजिकल है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर एनर्जी सोल है. इसीलिए कहते हैं शरीर में आत्मा बैठी हुई है, राइट. नाउ कमिंग टू द प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड. अभी हमने देखा वो जो पर्सन था वो कैसे ठीक हो गया, वो पर्सन कैसे ठीक हो गया, उसके माइंड को हमने चेंज किया. उसकी जो प्रोग्रामिंग थी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को क्या कर दिया, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कहते हैं मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बेकार में सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, वेस्ट सोच रहा है. मन का काम है सोचना, ठीक है, लेकिन मन को जैसा प्रोग्राम करोगे वैसी क्वालिटी बनेगी उसकी थॉट की। जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम है, जैसा प्रोग्राम होगा वैसी आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो मन की प्रोग्रामिंग जैसी होगी वैसे ही वो सोचेगा। अब उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे होती है प्रोग्रामिंग, मतलब वो कैसा सोच रहा है। ऐसा ही एक पर्सन, जरूरी थोड़ी ना है कि वो डिप्रेशन में जाए। कोई पर्सन कम ओवर कर देते हैं कि ठीक है चलो हो गया हो गया। दो पेशेंट्स को हम देखते हैं, एक पेशेंट को हम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, उनको सिंकोपी हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स इजीली इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्यों, इंजेक्शन तो सेम है, माइंड की प्रोग्रामिंग अलग अलग है। तो प्रोग्रामिंग कहां से बनती है, सोचने का तरीका कैसे बनता है, जेनेटिक्स। जैसे हमारे पेरेंट्स की होती है, उनकी जीन्स हमारे अंदर आती है, तो हमारी सोच भी वैसी बनती है, राइट। पास्ट इंप्रेशंस, पुराने संस्कार। आप लोग मानते हो कि पुनर्जन्म होता है, कितने लोग मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो डॉक्टर्स कम्युनिटी में पुनर्जन्म मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, हाथ लंबा खड़ा करो। ओके, गुड नंबर, स्टिल 40% नहीं मानते। देखते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि एनवायरमेंट का जेनेटिक्स, जीन्स पे भी इन्फ्लुएंस होना, वो हम जानते हैं। जैसी हमारी कंपनी होती है उसका फर्क पड़ता है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग पर, भाई जो जैसा लोग हमें बताएंगे वैसा हम सोचेंगे। और चौथा है डिफॉल्ट या इननेट प्रोग्रामिंग, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ओके, तो जेनेटिक्स, जैसा फादर होगा उसकी क्वालिटीज बच्चे में भी आती है। कहते ना इनके माँ बाप ने ये संस्कार दिए हैं, अपने घर के संस्कार लेकर आते हैं, माता पिता के संस्कार आते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक्स हम सब जानते हैं, ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम्स में, एग्रीड। दूसरा, माइंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफरेबल, जिसको हम पुनर्जन्म कह सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। देर आर सम केसेस लाइक चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हुए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, गूगल बॉय, या ये जो गर्ल है जिन्होंने पियानो सीखा, या दिस गर्ल जिन्होंने बहुत कम एज में मास्टरी की सब्जेक्ट्स में, इन्होंने मोजार्ट के साथ प्ले किया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हैं। अब इनके पेरेंट्स तो वो नहीं थे ऐसे म्यूजिशियन या आर्टिस्ट, तो इनके अंदर वो जीन्स कहां से आए, प्रोबेबली पहले का जन्म था, जिसको हम कहते हैं इनके पुराने संस्कार होंगे ऐसे। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ लोग करवाते हैं ना, पुनर्जन्म में लेकर जाते हैं, उनको याद दिलाते हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो लोग बताते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, और फिर जब उनको दिख बताया जाता है, जो वो बताते हैं वो एग्जैक्टली वही निकलता है, तो जो प्रूव करता है। बट ये एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं, साइंस इसका एविडेंस कैसे देखता है, आई विल टेल यू सम अनयूजुअल स्टोरीज। न्यूरोलॉजिस्ट हूं ना, तो कुछ न्यूरोलॉजी की बातें बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, राइट। अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी चली जाती है। यूके में ऐसे पेशेंट्स को ओल्ड एज होम में रखा जाता था, रखा जाता है। वहां पर उनको एक बार क्या किया गया, बोला गया कि आप पेंटिंग करो, तो सबने पेंटिंग की, राइट। एक पर्सन ने मास्टर आर्ट बनाया, मास्टर आर्ट, तो सब हैरान हो गए, डिमेंशिया पेशेंट कैसे। तो उनके घर वालों को फोन किया गया कि आप पेंटर थे क्या, तो पता है क्या कहते हैं उनके घर वाले, पेंटर, इन्होंने तो कभी हाथ में ब्रश भी नहीं पकड़ा होगा, आप पेंटिंग की बात करते हो। अब उनको लगा कि कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, तो उन्होंने क्या करा कि दोबारा से उसको बोला कि अच्छा अब बनाओ, फिर से उन्होंने मास्टर आर्ट बनाया। हाउ इज इट पॉसिबल, बैफलिंग, कैसे हो सकता है जिसने कभी पेंट ब्रश नहीं पकड़ा हो वो मास्टर आर्ट बना दे। एक और केस, मोर अनयूजुअल, स्ट्रोक पैरालिसिस। हम सब पेशेंट देखते हैं, हमने सबने पढ़ा है स्ट्रोक, हमारा एक फंक्शन डैमेज हो जाता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कोई नया फंक्शन डेवलप हो जाए। एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, एंड व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट डे ही वॉज स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज जो ना तो कभी उसने सीखी थी ना कभी बोली थी। हाउ इज इट पॉसिबल, ये रियल वर्ल्ड स्टोरीज नहीं है, ये रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोज हैं। देन इट वॉज फाउंड आउट, न्यूरोसाइंटिस्ट फाउंड आउट कैसे, दे फाउंड आउट, इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, दूसरी भाषा बोलना है, दूसरे एक्सेंट में बोलना कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा। दे फाउंड आउट हमारे ब्रेन में नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स हैं। जैसे समझिए यहां पर अभी व्हाइट लाइट्स हैं, राइट, अभी ये बंद कर दें रेड लाइट हो जाएगी, ये स्विच ऑफ किया दूसरी लाइट ऑन की तो रेड लाइट हो गई, वो स्विच ऑफ किया ये ऑन किया तो व्हाइट लाइट हो गई। सेम वे हमारे ब्रेन में कुछ नेटवर्क्स एक्टिव होते हैं, कुछ नेटवर्क्स इनएक्टिव होते हैं। अब क्या हुआ, डिमेंशिया या स्ट्रोक होने से जो एक्टिव नेटवर्क था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इनएक्टिव हो गया। जो अंडर सरफेस पे नेटवर्क था वो सरफेस अप हो गया। यहां पर कार्डियोलॉजिस्ट है कोई, फिजिशियंस, ऐसे नोड जब काम करना बंद करता है तो कौन सा नोड काम करता है, एवी नोड, सबको पता है। क्यों, पहले क्यों नहीं करता ऐसे नोड जब काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे नोड डोमिनेंट है। द मोमेंट ऐसे नोड फेल्स, एवी नोड टेक्स प्लेस, टेक्स ओवर। सेम इन्हीं के साथ हुआ, उनका जो ऊपर वाला था, डिमेंशिया वाला जो था, ऊपर का एक लेयरिंग था वो हट गया, आर्टिस्टिक संस्कार इमर्ज हो गया। बट माई क्वेश्चन टू दिस हाउस इज, वो संस्कार कभी ना कभी तो आया होगा ना, अगर इस जन्म में नहीं आया तो कभी ना कभी कहीं से आया होगा। सेम विद दिस पर्सन, एक्सेंट सिंड्रोम, कभी ना कभी तो उसने सीखी होगी, इसका मतलब इट प्रूव्स वो पहले से लेकर संस्कार आते हैं, लेकिन वो हिडन हो जाते हैं कौन से, नए संस्कार से। और वो ठीक भी है, नहीं तो अगर वो संस्कार भी रहे तो कितने पेरेंट्स के कितने संस्कार हो जाएंगे, फिर तो एक खिचड़ी बन जाएगी, राइट, यू ऑल एग्री विद मी। नाउ हु डज नॉट बिलीव कि पुनर्जन्म होता है, ओके, आप अलग से बात करना फिर और एविडेंस बताएंगे, तो दिस वी विल डिस्कस। क्यों सबके साथ नहीं होता है, अभी बताया ना, अगर होने लगे ये फिर तो खिचड़ी बन जाएगी। अगर मुझे याद रहने लगे मेरे लास्ट बर्थ में कौन से माता पिता थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्प्यूट्स ही डिस्प्यूट्स होंगे। सो इट्स अ नेचर्स वे टू हाइड, बट पैथोलॉजी हो गया, प्रॉब्लम हो गया तो वो अनकवर हो गया, सिंपल है। एवी नोड इज नॉट राइट, इट्स नॉट ए गुड पेस मेकर, एग्री, एस ए नोड इज द बेस्ट पेस मेकर, लेकिन अब वो डिजीज हो जाए तो क्या होगा, इट्स लाइक दैट। नेटवर्किंग थ्योरी, दिस इज कमिंग अप, ये वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड है, विच अनफोल्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। कैसे, आप यहां पर देख रहे हैं लिखा है द ब्रेन इन न्यूट्रल, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। वेन यू स्विच ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेटवर्क ऑफ ब्रेन एरियाज नॉट इन्वॉल्व इन फोकस अटेंशन बर्स इन टू एक्शन विच इज नोन एज द डिफॉल्ट नेटवर्क। डिफॉल्ट कहने का मतलब है हमारे ब्रेन में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, और जब ऊपर के लेयर्ड नेटवर्क स्विच ऑफ हो जाते हैं तो कौन सा नेटवर्क आता है, डिफॉल्ट नेटवर्क। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, जो बाय डिफॉल्ट है, बाय बट नेचुरल है, बट नेचुरल है। और डिफॉल्ट का एक और मतलब होता है डिफॉल्ट विदाउट एनी फॉल्ट विच इज प्योर, एंड दैट इज वॉट इननेट संस्कार इज। ऐसा देखा गया, आप देखिए इसमें, if you see on the right hand side these are the various networks, DMN default mode network, AN affective network, FPCN, these are all different networks in the brain। jab sare networks agar aap left hand side mein dekhen, ek hai dorsal attention network, jab hamari attention hai, theek hai, to hamare networks jo superficial layers hain wo active hain, aur jab wo silent ho jate hain, on the right hand side you see default mode network which is DMN active when not thinking anything about outside, which is in meditation, silent mind peace, intuition, samadhi, enlightenment। तो जब हम meditate करते हैं, enlightenment, समाधि में जाते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा DMN activate हो रहा है, और वो DMN कौन सा network है, that is without any fault and which has been given by not parents, not environment, not by somebody else, but by God. जो आपने अभी सुना, the innate qualities, जो वो बोल रहे थे ना कि आपके ये अपने साथ संस्कार हैं. These are our default. Default. They don't have any fault either. So meditation वो activate करता है. This is science. तो mind programs, ये सारा circuits है brain में. Brain is all circuits. जो हम पढ़ते थे ना, occipital lobe, temporal lobe, parietal lobe, frontal. अब ये सारे distinction blur हो रहे हैं. ये हमने बनाए थे. Mind is connectomics. Connections, connections, connections. किसके बीच में connections? Neurons के बीच में. ये इस डायग्राम से बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझाते हैं, थोड़ा सा न्यूरोलॉजी पढ़ाते हैं. ब्रेन एक्ट्स लाइक अ सर्किट. जैसे हमारे घर में वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ब्रेन में कौन सी वायर्स हैं? न्यूरॉन्स. हाउ मेनी न्यूरॉन्स? नॉट वन, टू, नॉट लैक्स, हंड्रेड बिलियन न्यूरॉन्स. नॉट मिलियन, हंड्रेड बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर. उनके बीच में कनेक्शंस हैं. जो ऊपर वाला डायग्राम है ऑन द लेफ्ट अपर साइड, यू सी दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर. नीचे वाला पिक्टोरियल डायग्राम है. ऑन द राइट हैंड साइड जो नीचे वाला है, द राउंड वंस आर द न्यूरॉन्स एंड देयर आर कनेक्शंस. अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ डार्क लाइंस हैं, ब्लैक लाइंस, कुछ ग्रीन लाइंस हैं, कुछ डॉटेड लाइंस हैं. देख रहे हैं ये क्या है? ये जो कनेक्शंस है ना, ये डिसाइड करते हैं हमारे पैटर्न ऑफ थिंकिंग. पैटर्न मीन्स संस्कार. जैसा हमारा संस्कार होगा वैसी सोचोगी. मान लो मेरा संस्कार है पॉजिटिव, तो मैं हर चीज को कैसे देखूंगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही सोचूंगा. एक डिप्रेस्ड पर्सन है, उसका संस्कार क्या है? डिप्रेशन का. तो वो उसकी थिंकिंग भी कैसी होती है? वो अच्छाई में भी बुराई देख लेता है. वो हर चीज में एक क्या देखता है? होपलेसनेस देखता है, हेल्पलेसनेस. तो ये सर्किट डिसाइड करते हैं कि हम कैसे होंगे. अब डार्क लाइन का मतलब है हर किसी के अंदर सेम सर्किट्स हैं. न्यूरॉन्स सबके अंदर है, 100 बिलियन सर कनेक्शंस भी हैं. लेकिन एक्टिव ब्लैक डॉटेड लाइन सबकी अलग अलग होंगी. जैसे लाइट व्हाइट है, रेड है, तो जो इसमें ब्लैक लाइन्स हैं, मान लीजिए वो संस्कार है जल्दी से एंग्जाइटी क्रिएट करने का. वो आपके अंदर अगर है, किसी और के अंदर नहीं है, तो उसका वो संस्कार एक्टिव नहीं है. इसीलिए एट अ टाइम हमारा सारा ब्रेन एक्टिव नहीं होता. यू अंडरस्टैंडिंग? हमारे ब्रेन के जो सर्किट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा संस्कार कैसे होगा. अब हर किसी के अंदर सर्किट्स हैं, बहुत सारे संस्कार हैं. कुछ एक्टिव हैं, वो जो एक्टिव हैं उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं. तो इसीलिए कहते हैं अध्यात्म में क्या कहते हैं, हमारे ही अंदर राक्षस है, हमारे ही अंदर देवता है. क्या सुना है ना हमने? अपने अंदर ही देवता है, अपने अंदर ही राक्षस है. साइंटिफिकली ये उसका रीजन है, संस्कार. देवता राक्षस कैसे बनते हैं? संस्कारों से. तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलेसी, ईगो, ये नेगेटिव संस्कार हैं. और दूसरी तरफ पॉजिटिव संस्कार, एंजेलिक, दोनों हैं, हमारे अंदर है. नाउ स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है? स्पिरिचुअलिटी का कोर एम क्या है? हम यहां क्यों आए हैं? हमारे अंदर दोनों हैं, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है. स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करना चाहते हैं? अपने जो बैड संस्कार हैं उनको इन एक्टिव कर देना चाहते हैं, और जो गुड संस्कार हैं उनको एक्टिव कर देना चाहते हैं. माइंड इट, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? दोनों संस्कार हमारे अंदर ऑलरेडी हैं. इसीलिए कहते हैं खुशी बाहर मत ढूंढो, खुशी आपके अंदर है. सब बातें सेट हो गई? शांति बाहर मत ढूंढो, शांति इंसान के अंदर है. हम सोचते थे अंदर कहां है, मुझे तो दिख नहीं रहा, डिसेक्शन भी कर लिया, दिखा नहीं. एक्चुअली में सर्किट में है, लेकिन वो इनएक्टिव है. हमें उसको क्या करना है, जिसको उन्होंने कहा अपने अंदर झांको, अपने आत्म जागृति लेकर आओ. जागृति मतलब एक्टिवेट करो. हो गया साइंटिफिक? दिस इज कॉम्बी ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. क्यों हम ये सब ना करें। ये लोग कहते हैं गुस्सा मत करो, परेशान मत हो। क्यों नहीं हो? नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो परेशान नहीं होंगे क्या? कोई हमसे गलत बात बोलेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? अभी आरजी कार में इतना खराब इंसिडेंट हुआ, हम सब जानते हैं, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? ये कहते प्यार करो, प्यार करो। क्यों? यहां पर हमने एक बात सीखी, नेगेटिविटी नेवर कैन ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम। सेम थ्योरी है जो आपने कार्मिक में भी सुना होगा, जो बॉल फेंकोगे आएगी। नेगेटिविटी कभी भी पॉजिटिव आउटकम नहीं देती। हम रिटेलिएट तो करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसका भी नेगेटिव बना, हमने जो रिटेलिएट किया वो भी नेगेटिव बन जाता है। अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं साइंटिफिकली। कितने लोग मानते हैं गुस्सा करना पड़ता है काम करवाने के लिए तो काम होता नहीं है? हाथ खड़ा करो, लंबा। देखो दो दिन सेशन के हो गए, अभी भी लोग मानते हैं गुस्सा जरूरी है। सिचुएशन है ना, अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, अब कोई काम नहीं कर रहा है, नर्स नहीं कर रही, हमारे कलीग जूनियर्स नहीं कर रहे, तो गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, सुनते ही नहीं है। एग्रीड? फिर से एक बार हाथ खड़ा करना, लंबा। भाई फोटो ले लो, देखो हाथ खड़ा किया है। चलो तो गुस्सा जरूरी है कभी कभी। अच्छा चलो, गुस्से से पहले, गुस्सा थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, थोड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं, लव। लव अच्छा है ना। एक कहावत है, हम सब कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में, आप सब, हम सभी पढ़े हैं, उस समय शौक होता है नया नया, प्यार अंधा होता है, सुना है? अच्छा मानते कितने लोग हैं कि सच्ची में अंधा होता है? हाथ खड़ा करो भाई। हाँ इतने से हाथ है। अच्छा कौन कहता है अंधा नहीं होता है? हाथ खड़ा करो। बाकी लोग क्या है? ऐसे नहीं चलेगा, देखो आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हो, बेइज्जती हो जाएगी फिर तो, ऐसे नहीं। हाँ तो है तो हाथ खड़ा करना है ना। अब लोगों ने तो कांट नो कमेंट्स कर दिया, क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसे नहीं, नहीं चलेगा, नो ऑप्शन। लव इज ब्लाइंड, हाथ खड़ा करो। ओ मैनी, वेरी गुड। लव इज नॉट ब्लाइंड, हाथ खड़ा कीजिए। ओके तो 70-30 है, 70 थिंग्स लव इज ब्लाइंड, 30 थिंग्स लव इज नॉट ब्लाइंड। चलो अब साइंस देखते हैं क्या कहती है। लव, ब्रेन में दो सेंटर्स होते हैं, एक लॉजिकल सेंटर जो प्रीफ्रॉन्टल माइंड होता है, प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स, ये लॉजिक सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, और एक इमोशनल माइंड होता है यहां पर, जिसको हम अमिगडाला कहते हैं। इतना बेसिक हम सब ने पढ़ा है MBBS में, अगर आप रिकॉल करें तो। दिस इज इमोशनल माइंड, दिस इज लॉजिकल माइंड। साइंस कुछ कहता है, क्या कहता है वो भी हम बताते हैं। मान लीजिए एक कलीग है आपका, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अब उससे थोड़ी गलती हो गई, कुछ ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो गया, ठीक है, बॉस को पता चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? नहीं। अब एक कलीग है, वो आपको हमेशा नैक करता है और आपकी जानबूझकर आपकी जो गलती है ना सामने लेकर जाता है, बॉस के गलती नहीं भी होती फिर भी लेकर जाता है, बहुत परेशान करता है, ऐसे लोग भी होते हैं ना, नुसांसिस जिसको हम कहते हैं, नुसांसिस। अब उससे वो गलती होती है, अब क्या करोगे बॉस के सामने? मिल गया मौका, मिल गया मौका। लॉजिक माइंड कहता है राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। इमोशनल माइंड, लव और हेट ने आपके लॉजिक माइंड को क्या किया? इन्फ्लुएंस कर दिया। लव जिससे था उसकी गलती को छुपा लो, और जिससे हेट है उसकी गलती को नहीं भी होगी, कहेंगे इसी ने किया होगा सर। ये तो दुनिया है ना, अपने बच्चे की गलती होगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, पड़ोसी की बच्चे की? नहीं नहीं देखो पेनल्टी तो लगेगी। क्यों? लॉजिक कहता है सेम, लेकिन प्यार। हिस्ट्री में जाएं, धृतराष्ट्र था ना, क्यों वॉर हुआ? वो सिर्फ आंखों से अंधा नहीं था, वो किस में अंधा था? प्यार, प्यार में अंधा था? नहीं, पुत्र मोह में अंधा था। एक्चुअली साइंस कहता है अमिगडाला इन्फ्लुएंस करता है लॉजिक को, लेकिन कब? नीचे पढ़ो, ओवर एक्टिविटी रिप्रेसेस नॉट एक्टिविटी। प्यार बहुत अच्छी एक फीलिंग है, अगर इमोशंस नहीं होते तो क्या मदर कभी किसी बच्चे से प्यार कर पाती? वो तो कहती है बच्चे ने गलती किया उसको सजा दो। क्या हम किसी को माफ कर पाते? कभी नहीं कर पाते। प्यार भी जरूरी है, लेकिन जब वो ओवर एक्टिव हो जाता है मतलब वो अटैचमेंट का रूप ले लेता है, मोह बन जाता है, मतलब वो आपकी डिसीजन मेकिंग को अनराइटियसली इन्फ्लुएंस करता है, तब उसको मोह कहते हैं और तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए प्यार अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है। यू एग्री विद मी? गुड। अब क्रोध ऐसे ही, डिसिप्लिन एक बात है, लोग कहते हैं हम क्रोध नहीं करेंगे वो सुनेंगे नहीं, नहीं, आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो लेकिन गुस्सा करके नहीं, गुस्सा नहीं करना, एक्शन लेना है जो राइट है वो एक्शन लो, लेकिन जरूरी थोड़ा है गुस्सा करके ही करना है। गीता में कहा गया क्रोधा भवती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नाश, बुद्धि नाश पश्चात प्राण क्षयति, अर्थात क्रोध से सम्मोहित जैसा, हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, मेमोरी पर पर्दा आ जाता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट से प्राण ही नष्ट हो जाते हैं। और आपने देखा अमिगडाला जब ओवर एक्टिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो लॉजिक को भी काम करने नहीं देता। धृतराष्ट्र के वंश का पूरा इसीलिए विनाश हो गया क्योंकि उसने मोह में काम किया। और आज हम भी देखते हैं फैमिली पॉलिटिक्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। तो लव, एक नर्स और एक मदर में यही फर्क है, मदर को अटैचमेंट होता है, उसको पेन होता है, नर्स भी केयर करती है बच्चे की लेकिन उसको अटैचमेंट, मोह नहीं है, वो प्यार करती है। दूसरा, कितने लोग मानते हैं स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, हाथ खड़ा करो। देखो ब्रह्म कुमारी में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सच नहीं बोलेंगे, जाके किस किस को स्ट्रेस नहीं होगा, सबको होगा, प्रॉब्लम आएगी, सिचुएशंस, सुबह ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचे, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, बच्चे के मार्क्स नहीं आए, स्ट्रेस आएगा। तो डॉक्टर डियागो पिज़ागली ने बताया कि जब स्ट्रेस होता है ना, तो वो हमारे माइंड की मेमोरी पर बहुत खराब असर डालता है। अच्छा, इसको हम कैसे देखते हैं, हम सब लोग मेडिकल कॉलेज में थे ना, हम जब अपना चैप्टर पढ़ते थे, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, मेडिसिन हो, ऑप्स गाइनी हो, किसको एक बारी में याद हो जाता था पूरा चैप्टर, एक बारी में? कोई भी नहीं। दो बारी में? दो में मुश्किल है। तीन में? चार में? पांच? और बहुत बारी पढ़ा अभी तक याद नहीं हुआ। अच्छा, अब एक और सिनेरियो ले लो, जब बोर हो जाते थे तो क्या करते थे, मूवी देखने जाते थे, चलो यार मूवी देख के आते हैं, बहुत हो गया पढ़ाई। मूवी किस किस को दो बार देखनी पड़ती थी याद करने के लिए, हाथ खड़ा करो, कोई भी हाथ नहीं है, एक बार ही नहीं याद हो जाती थी, किसका किसके रिलेशनशिप था, किसने कौन सा डायलॉग बोला, किसने क्या एक्ट किया, पूरा याद, तीन घंटे की मूवी। भाई क्या चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? हाउ कम, ये कैसे, कैसे मूवी एक बार याद हो गई और हमारा चैप्टर कई बारी में भी याद नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम स्ट्रेस में पढ़ते थे, अरे कैसे होगा, याद तो हो नहीं रहा है, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, और मूवी कब देख रहे थे तो स्ट्रेस फ्री थे। स्ट्रेस हमारी मेमोरी को कवर कर देता है, स्ट्रेस हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को कम कर देता है, राइट? अब जो चीज हमारे ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है, एंगर हमने देखा अच्छा नहीं है, अटैचमेंट देखा अच्छा नहीं है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है। एंगर हम करते हैं जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, स्ट्रेस हम लेते हैं जब कोई हमारे ऊपर बॉसिंग करता है, दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। फिर हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, जो चीज अच्छी नहीं है वो क्यों करते हैं? ये इंटेलेक्चुअल्स का काम है, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। पावलोव एक्सपेरिमेंट सबको पता है, एनीबडी जिसको नहीं पता है, हम जानते हैं एक डॉग जिसको पहले एक फूड दिया गया तो उसके सलाइवेशन हुआ, फिर बेल रिंग की गई कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ दिन तक बेल और फूड साथ साथ रखा गया, सलाइवेशन हुआ, फिर कुछ दिनों बाद क्या किया गया, ओनली बेल रिंग की गई तो क्या हुआ, सलाइवेशन, क्यों? कंडीशनिंग हो गई कि फूड आएगा। एक बार क्या हुआ, हमारे फ्रेंड है, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की, कहते एक बार क्या हुआ, हमारा दूध वाला 8 बजे आता है सुबह, तो वो बेल बजाता है, हम दूध लेने जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कहते एक बारी बेल बजी, मैं गया, दरवाजा खोला, मेरे हाथ में वो यूटेंसिल था और सामने कौन खड़े थे, दूध वाला नहीं, मेरे तीन फ्रेंड्स खड़े थे। कहते मेरा स्वागत इस यूटेंसिल से करोगे क्या, वो फ्रेंड्स कहते। क्यों, बेल बजी, बेल ने ये नहीं कहा कि दूध वाला है, उनकी कंडीशनिंग थी कि कौन होगा, दूध वाला होगा। दिस इज वेरी 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 डीप। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, एंगर, ये हमारे कंडीशन रिस्पॉन्स हैं। अभी हमने कहा ना स्ट्रेस होगा ही होगा। जब हम छोटे थे ना तो हम गिर जाते थे तो हमारे पेरेंट्स पता क्या कहते थे, अरे देखो देखो जमीन ने तुम्हें मारा ना, जमीन को दो लगाओ। कहते थे पेरेंट्स जमीन को मारो। अभी भी पेरेंट्स क्या कहते, जमीन को मारो। बच्चे ने क्या सीखा, गलती किसकी है, जमीन की, एंगर। तो फिर हमें बाद में कर लेंगे, ठीक है, राइट। गलती जमीन की है, सीख लिया। जब हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते, तुम्हें टेंशन नहीं होती क्या पढ़ने की, तुम्हें चिंता नहीं है तुम्हारे फेल हो जाओगे। इंटेंशन प्योर थी कि बच्चा पढ़े, लेकिन हमने क्या फीड किया साथ में, चिंता भी होनी चाहिए, टेंशन भी होनी चाहिए। ये तो हमने फीड किया ना। अगर हम ये कहते देखो बच्चे पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, खुश खुश होके पढ़ो, तुम्हें कंसर्न होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, बच्चे की वो कंडीशनिंग कभी नहीं होती। अगर हम बच्चे को कहते देखो बच्चे गिर गए, कोई बात नहीं, देखो तुम थोड़ा सा वॉबल कर रहे थे इसलिए तुम गिर गए, तो संभल के चलोगे तो नहीं गिरोगे, वो बच्चा कभी दूसरे को ब्लेम नहीं करना सीखेगा। ये हमारी कंडीशनिंग है, हमें सिखाया गया। क्या बाहर कुछ एडवर्स इवेंट हो जाए, अंदर से क्या हो, दुखी हो, वो बाहर की सिचुएशन है, लेकिन अंदर की कंडीशनिंग किसने की, मैंने की। क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि हाँ ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशनिंग की जाती जो कुछ पेरेंट्स करते हैं, बाहर प्रॉब्लम है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अंदर से स्ट्रांग रहना है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है। अभी मुझे एक बात याद आती है, हमारे नीस है तो उसने अपने शेयर किया अपनी मदर से कि मम्मी मैं ना असेंबली में खड़ी थी, मुझे किसी ने पुश किया पीछे से, तो मम्मी का क्या जवाब होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए। आई वॉज अमेज्ड बाय हर आंसर। मम्मी ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, उन्होंने पुश किया ना, कोई बात नहीं, तुम इतनी स्ट्रांग बनो कि कोई तुम्हें पुश करे भी तो तुम गिरो नहीं। इतना अच्छा जवाब लगा हमें। उस बच्ची ने क्या सीखा, दूसरे को नहीं बदलना मुझे, मुझे स्ट्रांग बनना है, दूसरे को ब्लेम नहीं करना, ना परेशान होना है वहां पर, मुझे स्ट्रांग बनना है बिना परेशान हुए। कंडीशनिंग हो गई। ये है ब्रेन का गेम, ये है प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा सेशन 15-20 मिनट लेट है, दीदी आ गए हैं, अभी हम इसको यहीं रोकेंगे, ठीक है, और फिर अगर कहीं पर एडजस्ट होगा तो करेंगे आगे कंटिन्यू, नहीं तो फिर यहां तक जो हमने सीखा, ये सारा साइंस है, जो जो आप सीख रहे हो राजयोग, उसकी ये सारी साइंटिफिक प्रूफ्स है। यू एग्री विद मी? थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।